हवेली के उस कमरे में खामोशी अभी पूरी तरह बैठी भी नहीं थी कि टुक, श्यामली ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। फ़ोन की स्क्रीन काली हुई और उस काली स्क्रीन में जैसे विश्वनाथ का चेहरा और भी सख्त दिखने लगा। उसकी उंगलियां कुछ सेकंड तक फ़ोन पर जमी रहीं, जबड़े हल्के भींच गए और आँखों में एक अजीब सा मिश्रण था, गुस्सा भी और थोड़ी सी हैरानी भी। इतनी हिम्मत, उसने धीमे से खुद से कहा, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पगली, उसने सिर हिलाया और बिना ज़्यादा सोचे फिर से कॉल कर दिया। उधर श्यामली अभी भी फ़ोन हाथ में लिए खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और आंखों में गुस्से के साथ हल्की नमी भी थी। फ़ोन फिर से बजा, स्क्रीन पर वही नाम, विश्वनाथ। कुछ सेकंड तक वो उसे देखती रही, जैसे तय कर रही हो उठाना है या नहीं। फिर उसने कॉल उठा लिया। क्या है? इस बार उसकी आवाज़ ठंडी थी, सीधी, बिना किसी नरमी के। विश्वनाथ ने तुरंत कहा, फ़ोन क्यों रखा? उसकी आवाज़ अब पहले से थोड़ी तेज़ थी। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। श्यामली हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, कटाक्ष भरी थी। हाँ, उसने धीरे लेकिन चुपते हुए कहा, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपनी बात कह दी और सामने वाले की सुनना ज़रूरी नहीं समझते। विश्वनाथ कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। देखो श्यामली, उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, जो होना था वो हो चुका है। अदिति ने जो किया उसके लिए उसे सज़ा देना ज़रूरी था। श्यामली ने तुरंत जवाब दिया, आई नो। उसकी आवाज़ में इस बार दर्द साफ था। लेकिन सज़ा देने के और भी तरीके होते हैं विश्वनाथ जी, हर बार घर तोड़ देना ही हल नहीं होता। विश्वनाथ की आंखें सिकुड़ गईं। देखो, उसने थोड़ा सख्त होकर कहा, तुम ऐसे मत बोलो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। श्यामली कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसने आगे जोड़ दिया, और उसकी आवाज़ में अब अहंकार साफ था, तुम अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो कि बड़े लोगों के फैसले समझ सको। बस ये एक लाइन, और उधर श्यामली का चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा अब साफ चल रहा था। ओ अच्छा, उसने धीमे लेकिन जहरीले अंदाज में कहा, तो अब मैं बच्ची हो गई? विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा। फिर आप बच्चों से बात क्यों कर रहे हैं? उसने तुरंत पलटवार किया। जाइए ना, अपनी उस खास दोस्त अक्षरा से बात कीजिए। उसने खास शब्द पर खास जोर दिया। विश्वनाथ की भौं हल्की उठी। श्यामली रुकी नहीं, वैसे उसने ताना मारा, वो भी आपकी उम्र की तो नहीं है, कम से कम 10 साल छोटी तो होगी ही। एक बात तो कहिए, आपको कम उम्र की लड़कियां ही क्यों पसंद आती हैं? कमरे में जैसे हवा भारी हो गई। विश्वनाथ कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक शरारती, थोड़ा खतरनाक और थोड़ा नॉटी एक्सप्रेशन आ गया। मैं नहीं, उसने धीमे, थोड़ा खींचते हुए अंदाज में कहा, छोटी लड़कियां खुद पसंद करती हैं। उसकी आवाज़ में हल्की मुस्कान फुली हुई थी। मैं उनके पीछे नहीं जाता, वो खुद आ जाती हैं मेरी लाइफ में। उधर श्यामली का चेहरा एक सेकंड के लिए बिल्कुल सन रह गया, फिर बस, उसने गुस्से में कहा और बिना कुछ और सुने कॉल काट दी। इस बार उसने फ़ोन दूर फेंक दिया। बेड पर उसकी सांसें अब तेज थीं, आंखें भरी हुई थीं, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। इडियट, उसने दांत भींच कर कहा, घमंडी, और वो शब्द ढूंढ ही रही थी, लेकिन गुस्सा इतना था कि शब्द छोटे पड़ रहे थे। उधर विश्वनाथ ने फ़ोन हटाया, स्क्रीन को देखा, कॉल कट। कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। पगली, उसने बेहद धीमे कहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था अब, बस एक अजीब सी दिलचस्पी थी। जितना गुस्सा करती है उतनी ही अच्छी लगती है। उसने फ़ोन टेबल पर रखा और खिड़की की तरफ बढ़ गया। बाहर हवेली की लाइट्स चमक रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही आवाज़ गूंज रही थी, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। उसने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे कहीं अंदर वो बात लग गई हो। दूसरी तरफ अदिति का कमरा। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी, पर्दे बंद थे और माहौल में एक अजीब सी नज़दीकी खुली हुई थी। बिस्तर पर अदिति और आर्यन साथ लेटे हुए थे। दोनों बहुत करीब, इतना कि उनके बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। आर्यन का हाथ अदिति के बालों में उलझा हुआ था और वो उसे चुपचाप देख रहा था। अदिति की आंखें आधी बंद थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आर्यन थोड़ा झुका और उसने अदिति के माथे पर बहुत हल्का सा किस किया, फिर धीमे से बोला, पापा ने जो किया दिल पर मत लेना। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन अंदर कहीं दर्द भी छुपा था। वो, उसने धीरे से कहा, जल्दी हमें वापस ले जाएंगे। अदिति ने आंखें खोली, सीधे उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में भरोसा नहीं था, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। मुझे पता है, उसने बहुत शांत स्वर में कहा। फिर थोड़ा और करीब आकर उसने उसकी शर्ट पकड़ ली, और अगर वो नहीं आए, उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक हो गई, तो हम खुद चले जाएंगे, आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। इतना आसान है? अदिति की आंखों में चमक आ गई। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। वो और करीब आई। अब उनके चेहरे बस कुछ इंच दूर थे। उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, दिल की धड़कनें जैसे एक रिदम में आ गई थी। और फिर आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बिना कुछ कहे उसके होठों को छू लिया। अदिति ने एक पल भी नहीं लिया, वो उसी पल उसमें खो गई। उनके बीच की दूरी खत्म हो गई और वो एक गहरे लंबे किस में डूब गए, जहां गुस्सा, दर्द और जिद तीनों मिलकर एक अजीब सी आग बन गए थे। कमरे की हवा भारी हो गई, पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, और उस पल में दोनों ने जैसे दुनिया से खुद को काट लिया था। हवेली के अलग अलग कोनों में अलग अलग खेल चल रहे थे। कहीं झूठ की बुनियाद रखी जा रही थी, कहीं रिश्ते टूट रहे थे, कहीं नए इरादे बन रहे थे, और कहीं जिद और आकर्षण मिलकर एक खतरनाक कहानी लिख रहे थे। कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रही थी, ये अब चालों की कहानी बन चुकी थी, और हर चाल के पीछे एक राज छुपा था, जिसका खुलना अभी बाकी था।